एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और स्वागत है इस चर्चा में। मैं हूँ मेजबान वन।
और मैं हूँ मेजबान दो। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कहूंगा कि काम की किताब पर बात करने वाले हैं, बिहेवियरल इनसाइट्स। इसके लेखक हैं माइकल हॉल्सवर्थ और एल्सपेथ किर्कमैन।
हाँ, और ये किताब आज के जमाने में मतलब बहुत जरूरी लगती है ना, क्योंकि ये समझाती है कि हम इंसान असल में फैसले कैसे लेते हैं।
बिल्कुल,
हम सोचते कुछ और हैं कि हम बड़े सोच समझ कर एकदम नफा नुकसान देखकर फैसले करते हैं, पर असलियत शायद कुछ और ही है।
बिल्कुल, वो जो पारंपरिक तरीके हैं ना, जो मानते हैं कि इंसान हमेशा अपने भले के लिए ही काम करेगा, वो होमो इकोनॉमिकिस वाला विचार, वो अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं। ये किताब इसी पहेली को एक तरह से सुलझाती है।
अच्छा, ये बताती है कि हमारी अपनी सोच के तरीके, मतलब हमारे बायसेस, हमारे आसपास के लोग, माहौल, ये सब हमारे फैसलों पर कितना गहरा असर डालते हैं।
और सबसे अच्छी बात शायद ये है कि ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती बल्कि सोल्यूशन की तरफ भी इशारा करती है।
हाँ हाँ,
कि कैसे इस समझ का इस्तेमाल करके बेहतर नीतियां बन सकती हैं, बेहतर प्रोडक्ट्स, बेहतर सेवाएं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो या सेविंग्स की बात हो या फिर पर्यावरण।
सही कहा, और इसीलिए इसके लेखक भी बड़े खास हैं। माइकल हॉल्सवर्थ और एल्सपेथ कुकमैन सिर्फ एकेडमिक नहीं है, मतलब सिर्फ यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर नहीं है।
हाँ,
ये लोग व्यवहार विज्ञान को असल दुनिया में प्रैक्टिकली लागू करने वाले एक्सपर्ट्स हैं, अग्रणी कहना चाहिए।
अच्छा, जैसे माइकल हॉल्सवर्थ है, वो BIT यानी द बिहेवियरल इनसाइट्स टीम के अमेरिका डिवीजन के हेड हैं, सही कहा ना?
हाँ बिल्कुल, और BIT को लोग मजाक में नज यूनिट भी कहते हैं।
हाँ सुना है।
इसे असल में ब्रिटेन सरकार ने शुरू किया था। आइडिया ये था कि सरकारी नीतियां बनाते वक्त इंसानी बर्ताव की जो समझ है उसका इस्तेमाल किया जाए। हॉल्सवर्थ ने तो दुनिया भर की सरकारों को सलाह दी है इस पर।
और एल्सपेथ किर्कमैन, वो भी BIT में ही है।
हाँ, वो सीनियर डायरेक्टर हैं BIT में, और उनका काम खास तौर पर सामाजिक मसलों पर रहा है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा। इन क्षेत्रों में उन्होंने अनगिनत छोटे छोटे बदलाव, मतलब इंटरवेंशंस डिजाइन किए हैं, और सबसे जरूरी बात
क्या,
उनकी पक्की जांच की है, कठोर मूल्यांकन जिसे कहते हैं। उन्होंने असल दुनिया में सैकड़ों रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, मतलब RCTs किए हैं।
RCTs, ये थोड़ा टेक्निकल सा लगता है सुनने में।
है थोड़ा, पर इसका मतलब बड़ा आसान है। समझिए कि जैसे डॉक्टर नई दवा का असर जानने के लिए टेस्ट करते हैं ना।
हाँ?
कुछ लोगों को नई दवा देते हैं, कुछ को पुरानी दवा, या फिर प्लेसिबो यानी नकली दवा, फिर देखते हैं कि किस ग्रुप में ज्यादा सुधार हुआ।
अच्छा, ओके।
बस ये वही तरीका है। इससे पक्का पता चलता है कि कोई तरीका सच में काम कर रहा है या बस हमें ऐसा लग रहा है। तो ये लेखक सिर्फ थ्योरी नहीं जानते, इन्होंने जमीन पर काम किया है, प्रयोग किए हैं, और वो जानते हैं कि असल दुनिया में इन आइडियाज को लागू करने में क्या मुश्किलें आती हैं। उनका यही तजुर्बा इस किताब को बहुत प्रैक्टिकल बनाता है।
सही बात है। तो फिर किताब का सार क्या है, मतलब मोटे तौर पर ये किस बारे में?
देखिए, ये असल में प्रैक्टिकल बिहेवियरल साइंस की दुनिया का एक गाइड है, एक परिचय। और ये सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है।
अच्छा।
पॉलिसी बनाने वाले हों, बिजनेस लीडर्स हों, स्टूडेंट्स हों, या कोई भी आम इंसान जो ये समझना चाहता है कि भाई हम इंसान फैसले लेते कैसे हैं, उसके लिए बहुत काम की चीज है।
और इसका मेन आइडिया क्या है?
सबसे बड़ा आइडिया यही है कि पुरानी नीतियां इसलिए फेल होती हैं क्योंकि वो इकॉन के लिए बनी है। भी बताती है System 1 और System 2।
अच्छा हाँ, System 1 और System 2, मतलब दिमाग के दो तरह के सोचने के तरीके, एक तेज एक धीमा।
हाँ बिल्कुल, System 1 तेज है, ऑटोमेटिक, बिना ज्यादा सोचे समझे काम करता है, और System 2 धीमा है, सोच समझकर मेहनत करके काम करता है, और ज्यादातर टाइम।
कौन सा वाला चलता है?
ज्यादातर टाइम तो System 1 ही गाड़ी चला रहा होता है।
हाँ, सही है।
लेकिन किताब सिर्फ ये दिलचस्प बातें बताकर रुक नहीं जाती, वो एक पूरा तरीका, एक फ्रेमवर्क देती है समस्याओं को सुलझाने का। उसमें 4 कदम है।
4 कदम?
हाँ।
कौन कौन से?
पहला, परिभाषित करें, डिफाइन, मतलब साफ तौर पर तय करें कि आप कौन सा व्यवहार बदलना चाहते हैं, एकदम स्पेसिफिक। दूसरा, समझें, डायग्नोज, पता लगाएं कि लोग वो व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं, असली रुकावटें क्या हैं, जड़ तक जाएं।
ठीक है।
तीसरा, डिजाइन करें, अब इन रुकावटों को हटाने के लिए छोटे छोटे, अक्सर कम खर्चीले बदलाव सोचें। इसे चॉइस आर्किटेक्चर बदलना भी कहते हैं, मतलब लोगों के सामने विकल्प कैसे रखे जाते हैं उसे बदलना।
और चौथा
सबसे जरूरी, परीक्षण करें, टेस्ट, पक्के तौर पर जाने कि आपका तरीका काम कर रहा है या नहीं, अंदाजा नहीं, सबूत चाहिए, खासकर आरसीटीज के जरिए।
चलिए, ये तो एक अच्छा फ्रेमवर्क लग रहा है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आपने कहा कि हम होमो इकोनॉमिकस नहीं, होमो सेपियंस है, और सिस्टम वन ज्यादातर फैसले लेता है। यहीं पे वो कॉग्निटिव बाइसेस वाली बात आती है ना?
बिल्कुल। कॉग्निटिव बाइसेस यानी हमारी सोच के खास तरीके या झुकाव। ये दिमाग के शॉर्टकट की तरह हैं। कभी कभी मदद करते हैं पर अक्सर गड़बड़ भी कर देते हैं।
अच्छा, तो किताब में कुछ उदाहरण दिए होंगे इनके?
हाँ, कई मजेदार उदाहरण हैं। जैसे एक है लॉस अवर्जन, नुकसान से बचना।
लॉस अवर्जन?
हाँ, इसका मतलब है कि हमें मान लीजिए 100 रुपए खोने का दुख 100 रुपए पाने की खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है।
अरे हाँ, ये तो होता है।
बिल्कुल, इसीलिए हम अक्सर बदलाव से कतराते हैं, भले ही उसमें फायदा क्यों ना दिख रहा हो, पर कुछ खोने का डर ज्यादा होता है।
और
फिर है प्रेजेंट बायस, वर्तमान को तरजीह है। मतलब हम आज की छोटी खुशी के लिए कल का बड़ा फायदा कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं।
हाँ, जैसे डाइटिंग, आज का समोसा भारी पड़ जाता है कल की सेहत पे।
बिल्कुल, या रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना। मुश्किल लगता है ना, क्योंकि फायदा बहुत दूर है।
सही बात है।
एक और है स्टेटस को बायस और डिफॉल्ट इफेक्ट्स। जैसा है वैसा रहने दो, हमें चीजें जैसी हैं वैसी ही पसंद आती हैं, बदलना नहीं चाहते।
आलस या कुछ और?
आलस भी कह सकते हैं, या बस कंफर्ट जोन। इसीलिए डिफॉल्ट विकल्प सेट करना इतना पावरफुल है।
डिफॉल्ट मतलब?
मतलब जो अपने आप हो जाता है अगर आप कुछ ना करें। जैसे कई देशों में ऑर्गन डोनेशन के लिए अब ऑप्ट आउट सिस्टम है, यानी माना जाता है कि आप डोनर हैं, अगर आप नहीं बनना चाहते तो आपको मना करना पड़ेगा। इससे डोनर्स की संख्या बहुत बढ़ गई। या पेंशन स्कीम में ऑटो एनरोलमेंट।
अच्छा, मतलब सरकारें और कंपनियां इसका खूब इस्तेमाल करती होंगी।
बिल्कुल। फिर है एंकरिंग, लंगर डालना। हमें जो पहली जानकारी मिलती है ना, हमारा दिमाग उसी पर अटक जाता है, जैसे लंगर डल गया हो।
जैसे?
जैसे मान लीजिए कोई चैरिटी आपसे दान मांग रही है, अगर वो ऑप्शन दे 500, 1000, 2000 तो लोग शायद 500 दे दें, लेकिन अगर ऑप्शन हो 100, 200, 500 तो शायद 100 या 200 ही दे। पहला नंबर दिमाग में बैठ जाता है।
कमाल है। और
एक और बड़ा जरूरी है, सोशल नॉर्म्स, समाज क्या कर रहा है। हम बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं इस बात से कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं।
हाँ, ये तो है, देखा देखी।
बिल्कुल। अगर आपको पता चले कि आपके मोहल्ले के 90% लोग अपना कूड़ा सही जगह फेंकते हैं तो शायद आप भी फेंकने लगेंगे। या टैक्स वाला उदाहरण, 10 में से 9 लोग टाइम पर टैक्स देते हैं, ये लाइनें सच में काम करती हैं।
वाह, ये बातें तो हम सब रोज महसूस करते हैं पर शायद इतना ध्यान नहीं देते। तो ठीक है, हमने ये बायसेस समझ लिए, अब आगे क्या, किताब क्या कहती है?
किताब कहती है कि इस जानकारी को इस्तेमाल करना है, लेकिन तुक्के से नहीं, एक सिस्टम से। वही 4 कदम, डिफाइन, डायग्नोज, डिजाइन, टेस्ट।
हाँ, उन्हें थोड़ा और समझाएंगे। जैसे डिफाइन कैसे करें?
डिफाइन मतलब लक्ष्य एकदम साफ हो, जिसे नापा जा सके और किसी खास व्यवहार पर आधारित हो। ये नहीं कि हमें लोगों को स्वस्थ बनाना है, ये बहुत अस्पष्ट है।
तो कैसा होना चाहिए?
जैसे अगले 6 महीनों में डायबिटीज की जांच के लिए योग्य माने जाने वाले लोगों में से जांच करवाने वालों की संख्या 20% बढ़ानी है। ये स्पेसिफिक है, नापा जा सकता है।
ठीक है, फिर डायग्नोस मतलब पता लगाना कि लोग जांच क्यों नहीं करवा रहे।
हाँ बिल्कुल, जासूसी करनी है। क्या वो भूल जाते हैं? क्या फॉर्म भरना बहुत मुश्किल है? क्या उन्हें नतीजों से डर लगता है, या उन्हें लगता है कि उन्हें जरूरत ही नहीं है? इसके लिए लोगों से बात करनी पड़ सकती है, सर्वे करना पड़ सकता है, डेटा देखना पड़ सकता है।
ओके, फिर आता है डिजाइन।
हाँ, अब समाधान सोचने का समय है। अगर लोग भूल जाते हैं तो क्या SMS रिमाइंडर भेज सकते हैं? अगर फॉर्म मुश्किल है तो क्या उसे एकदम आसान बना सकते हैं, 1 पेज का? अगर लोग डरते हैं तो क्या उन्हें डॉक्टर से बात करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं? कई सारे आइडिया सोचने चाहिए, छोटे छोटे बदलाव।
और फिर सबसे जरूरी टेस्ट।
हाँ जी, टेस्ट ये सबसे जरूरी है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा आइडिया बहुत अच्छा है पर जरूरी नहीं कि वो काम करे।
तो टेस्ट कैसे करें? वही RCT।
हाँ, सबसे अच्छा तरीका वही है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल। कुछ लोगों पर अपना नया तरीका आजमाएं, ये हुआ ट्रीटमेंट ग्रुप, और कुछ लोगों पर पुराना तरीका या कुछ भी नहीं, ये हुआ कंट्रोल ग्रुप। फिर दोनों ग्रुप के नतीजों की तुलना करें। क्या आपके नए तरीके से सच में ज्यादा लोगों ने जांच करवाई? सिर्फ लगने से नहीं होता, सबूत चाहिए।
समझ गई। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, आपने कहा ये तरीके सच में काम करते हैं, किताब में उदाहरण है,
ढेरों उदाहरण है, और उन्हें अक्सर एक आसान से फ्रेमवर्क में समझाया जाता है, ESTE।
EST ये क्या है?
हाँ, ये एक तरह की चेकलिस्ट है कि आपके समाधान में क्या गुण होने चाहिए। उसे ईजी यानी आसान होना चाहिए, अट्रैक्टिव यानी आकर्षक होना चाहिए, सोशल यानी सामाजिक, और टाइमली यानी सही समय पर होना चाहिए।
अच्छा, एक एक करके बताएं, ईजी मतलब?
ईजी मतलब जितना हो सके आसान बना दो, रुकावटें कम करो, जैसे सरकारी फॉर्म छोटे और सरल हों।
हाँ, ये तो बहुत जरूरी है।
बिल्कुल।
या जैसे पेंशन में अपने आप नाम दर्ज हो जाए, ऑप्ट आउट डिफॉल्ट।
या वेबसाइट इस्तेमाल करना आसान हो। बेकार की रुकावटें, जिन्हें किताब स्लज कहती है, मतलब कीचड़।
स्लज मतलब फालतू की मुश्किलें।
हाँ वही, लंबे फॉर्म, छुपी हुई शर्तें, मुश्किल वेबसाइट नेविगेशन, इन सबको पहचानना और हटाना, इसे स्लज ऑडिट कहते हैं। ये बहुत असरदार हो सकता है।
अच्छा, फिर अट्रैक्टिव।
अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक बनाओ, जानकारी या विकल्पों को ऐसे पेश करो कि वो ध्यान खींचें। कभी कभी फायदे बताने से ज्यादा नुकसान से डराना काम करता है, लॉस अवर्जन। चीजों को मजेदार बना सकते हैं, कोई छोटा मोटा इनाम दे सकते हैं।
ठीक है।
और सोशल?
सोशल मतलब सामाजिक पहलू का इस्तेमाल करो, लोगों को बताओ कि दूसरे क्या कर रहे हैं, सोशल नॉर्म्स। जैसे वो टैक्स वाला उदाहरण था, 10 में से 9 लोग टाइम पर टैक्स देते हैं। ब्रिटेन में इससे टैक्स कलेक्शन बढ़ गया।
अरे वाह। या अमेरिका में ओ पावर नाम की कंपनी ने बिजली के बिल पर दिखाया कि आप अपने पड़ोसियों की तुलना में कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे लोगों ने बिजली बचाना शुरू कर दिया।
कमाल है। और आखिरी?
टाइमली।
टाइमली
मतलब सही समय पर। मदद या जानकारी तब मिलनी चाहिए जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट से ठीक एक दिन पहले रिमाइंडर भेजना ज्यादा असरदार है बजाय एक हफ्ते पहले भेजने के। या जब लोग जिंदगी के किसी बड़े मोड़ पर हों, नई नौकरी, नया घर, बच्चा होना, तब उन्हें सलाह देना ज्यादा काम आता है।
ये ईस्ट फ्रेमवर्क तो काफी प्रैक्टिकल लगता है। इजी, अट्रैक्टिव, सोशल, टाइमली।
हाँ, ये याद रखने में भी आसान है।
लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है, क्या ये छोटे छोटे नज या बदलाव सिर्फ छोटी चीजों के लिए है, या गरीबी, जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी जटिल समस्याओं में भी इनसे कुछ मदद मिल सकती है?
बहुत अच्छा सवाल है, और किताब इस पर भी बात करती है। वो कहती है कि हाँ, ये सिद्धांत बड़ी सिस्टम लेवल की समस्याओं को समझने और उनके हल ढूंढने में भी मदद कर सकते हैं।
ऐसे
इसमें फिर पूरे सिस्टम को देखना पड़ता है, कहाँ कहाँ बेवजह की रुकावटें यानी स्लज है, उसे पहचानना पड़ता है। मतलब एक पूरा स्लज ऑडिट करना पड़ता है सिस्टम का, और फिर इन व्यवहारिक उपायों को डेटा साइंस या दूसरी तकनीकों के साथ मिलाना पड़ता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से हमारे टूलबॉक्स का एक बहुत जरूरी औजार है।
समझ गई।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत का एक निचोड़ निकालें, तो कुछ खास बातें हैं जो उभर कर आती है।
हाँ, बताइए।
पहली और सबसे अहम कि हम इंसान परफेक्ट लॉजिक वाले इकॉन नहीं है। हमें असली इंसानों के लिए डिजाइन करना होगा, उनकी सोच, उनकी भावनाओं, उनके बायसेस को ध्यान में रखकर।
दूसरी,
माहौल बहुत मायने रखता है। कॉन्टेक्स्ट इज किंग। हम किस माहौल में फैसले लेते हैं, वो चॉइस आर्किटेक्चर इससे बहुत फर्क पड़ता है। और अच्छी बात यह है कि छोटे छोटे बदलाव भी बड़े नतीजे ला सकते हैं।
सही। तीसरा पॉइंट?
तीसरा, सबूत सबसे ऊपर है। एविडेंस इज पैरामाउंट। अंदाजे पर नीतियां नहीं बननी चाहिए, पक्की जांच खासकर RCTs के आधार पर बननी चाहिए। टेस्ट करो, सीखो और जरूरत पड़े तो बदलो।
ये बहुत जरूरी है। और चौथा,
चीजों को आसान बनाने में गजब की ताकत है। द पावर ऑफ डिफॉल्ट्स एंड फ्रिक्शन रिडक्शन। डिफॉल्ट सेट करना, रुकावटें हटाना, स्लज कम करना, ये शायद सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है व्यवहार बदलने का।
हाँ, और इन सब बातों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो देखते हैं ना।
बिल्कुल।
सोचिए, बैंक या म्यूचुअल फंड कैसे डिफॉल्ट ऑप्शन देते हैं, और हम में से ज्यादातर लोग शायद ही कभी उन्हें बदलते हैं।
सही बात।
या सरकारी योजनाओं के फॉर्म, अगर वो मुश्किल हो तो कितने लोग बीच में ही कोशिश छोड़ देते होंगे, भले ही वो योग्य हो। और हमारे समाज में सफाई रखने की आदत हो या लाइन में लगने की, ये सब सोशल नॉर्म्स पर कितना निर्भर करता है।
बिल्कुल। ये सिद्धांत सिर्फ किताबों या पॉलिसी पेपर्स के लिए नहीं है, ये हमारे चारों तरफ हर पल काम कर रहे हैं।
किताब में कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो एकदम दिमाग में बैठ जाती हैं, कुछ कोट्स या कोर आइडियाज।
हाँ बिल्कुल, कुछ बहुत शक्तिशाली केंद्रीय विचार हैं, अगर उन्हें अपने शब्दों में कहूँ।
हाँ।
पहला तो ये कि मकसद नासमझ या तर्कहीन लोगों को ठीक करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया डिजाइन करना है जो हम इंसानों की जानी पहचानी कमजोरियों या प्रवृत्तियों के प्रति थोड़ी ज्यादा क्षमाशील हो।
वाह, मतलब गलती इंसान की नहीं, सिस्टम की हो सकती है। सिस्टम को बेहतर बनाओ, ये बहुत अलग नजरिया है
ना। दूसरा विचार है कि सबसे ताकतवर चॉइस आर्किटेक्ट वो है जो डिफॉल्ट सेट करता है। ये हमारी वो जैसा है वैसा चलने दो वाली आदत स्टेटस को बायस की ताकत दिखाता है। जो अपने आप सेट हो गया अक्सर वही होता रहता है। और तीसरा जो नैतिकता के लिहाज से बहुत जरूरी है, व्यवहारिक बदलावों का लक्ष्य लोगों को उनके अपने लक्ष्य पाने में मदद करना होना चाहिए, ना कि पॉलिसी बनाने वालों के या किसी और के लक्ष्य उन पर थोपना।
ये बात तो बहुत ही गहरी और जरूरी है। मतलब ये विज्ञान मदद करने के लिए है, कंट्रोल करने के लिए नहीं।
बिल्कुल, एम्पावर करना है, मैनिपुलेट नहीं। कई बार लोग अच्छा करना चाहते हैं, सेहत सुधारना, पैसे बचाना, पर कर नहीं पाते। इरादे और एक्शन के बीच जो गैप है, ये तरीके उसे पाटने में मदद करते हैं।
सही है।
तो अब सवाल उठता है कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो इन आइडियाज का क्या करें, अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें?
हाँ, ये बताइए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स।
जरूर। देखिए, निजी जिंदगी में भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी आदतें सुधारने के लिए।
जैसे
मान लीजिए रोज सुबह दौड़ने जाना है पर उठने में आलस आता है, तो रात में ही अपने दौड़ने वाले जूते और कपड़े दरवाजे के पास रख दें। सुबह उठते ही सामने दिखेंगे, आपने रुकावट कम कर दी, मेकिंग इट ईजी।
हाँ, ये तो छोटा सा बदलाव है पर शायद काम कर जाए।
बिल्कुल। या पैसे बचाने हैं तो अपनी सैलरी आते ही एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दें सेविंग्स अकाउंट में। पैसा नजर से दूर, दिमाग से दूर। और जब कोई बड़ा फैसला ले रहे हो तो एक पल रुककर सोचें, कहीं आप पहली सुनी बात से ज्यादा प्रभावित तो नहीं हो रहे, या कुछ खोने के डर से कोई अच्छा मौका तो नहीं छोड़ रहे। मतलब अपने बायसेस के बारे में थोड़ा जागरूक होना।
और कामकाज की दुनिया में, ऑफिस में,
वहां भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट या वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो उसे इस्तेमाल करना एकदम आसान बनाइए। रिड्यूस स्लज। अपनी कंपनी की अंदरूनी प्रक्रियाओं को देखिए, कहीं बेवजह की जटिलता तो नहीं है जो कर्मचारियों का समय बर्बाद कर रही हो। मार्केटिंग में है तो सोशल प्रूफ, हजारों संतुष्ट ग्राहक, या लॉस एवर्जन, ऑफर सिर्फ आज के लिए का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। एचआर में है तो कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट प्लान या हेल्थ इंश्योरेंस जैसे लाभों के लिए अच्छे डिफॉल्ट ऑप्शन सेट करें।
और समाज के स्तर पर, मतलब बड़े पैमाने पर,
वहां तो अनगिनत संभावनाएं हैं।
जैसे
सरकारी सेवाओं में फॉर्म आसान बनाना, अपॉइंटमेंट के लिए SMS रिमाइंडर भेजना, इनसे कितना फर्क पड़ सकता है। लोग सेवाओं का बेहतर लाभ उठा पाएंगे।
हाँ।
पब्लिक हेल्थ में जैसे स्कूल या ऑफिस कैंटीन में हेल्दी खाने को आंखों के लेवल पर रखना, और जंक फूड को थोड़ा छुपाकर या दूर रखना। चॉइस आर्किटेक्चर,
ये तो बड़ा सरल आइडिया है।
सरल है पर असरदार हो सकता है। पर्यावरण के लिए रिसाइकलिंग को आसान और डिफॉल्ट बनाना, बिजली पानी के बिल पर पड़ोसियों से तुलना दिखाना ताकि लोग बचत करने के लिए प्रेरित हों। सोशल नॉर्म्स।
तो मतलब छोटे छोटे बदलावों से भी काफी कुछ हासिल किया जा सकता है।
बिल्कुल।
मेरे लिए इस किताब से जो सबसे बड़ी सीख रही वो शायद यही थी कि कितने छोटे, मतलब मामूली से लगने वाले बदलाव, माहौल में किए गए छोटे से फेर बदले कितना बड़ा असर डाल सकते हैं।
हाँ।
हमें हमेशा लगता है कि बड़ी समस्याओं के लिए बड़े बजट या बड़े नए कानूनों की जरूरत होती है, पर कई बार समाधान बहुत सीधा साधा होता है। बस हमें इंसानी व्यवहार को समझने की जरूरत होती है। और दूसरी बात जो मुझे अहम लगी वो है टेस्ट करने की अहमियत। कोई आइडिया सुनने में कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, असल में वो काम करता है या नहीं ये जानना बहुत जरूरी है। अंदाजे पर नहीं चलना चाहिए।
बिल्कुल सही। और मेरे लिए सबसे अहम बात यह रही कि लोगों को दोष देने के बजाय उस सिस्टम या उस माहौल को देखना जिसमें वो फैसले ले रहे हैं। ये समस्याओं को सुलझाने का एक ज्यादा असरदार और कहूंगा कि ज्यादा मानवीय तरीका है। ये किताब हमें सिखाती है कि इंसानी सोच की असलियत को, उसकी जटिलताओं और उसकी खामियों को समझकर हम सच में दुनिया को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, थोड़ा ज्यादा इंसान केंद्रित। चलिए, श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचने के लिए, अगर हमारे आसपास का माहौल ही हमारे फैसलों पर इतना असर डालता है तो हम जानबूझकर, सोच समझकर अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतर माहौल कैसे डिजाइन कर सकते हैं?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकता फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।